ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम सब बच्चों को मुरली में सेवा के बहुत डायरेक्शन दिए। सेवा में तो वैसे भी बच्चे बहुत होशियार हैं, इसलिए बाबा ने सारे डायरेक्शन देने के बाद कहा कि स्व उन्नति को मत भूल जाना। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सेवा करते हुए हम अपनी स्व उन्नति की तरफ ध्यान कैसे दें। स्व उन्नति का मतलब ही है कि आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंचे, बेदाग हो जाए, हल्की फुल्की फरिश्ते की तरह से उड़े, पुराने स्वभाव संस्कार सब खत्म हो जाए। तो ये जितनी भी बातें हैं इन सब का आधार तो यही है कि हमारे जो संकल्प हैं वो सुधरते जाएं, श्रेष्ठ बनते जाएं, नेचुरल रूप में महान संकल्प पैदा होने लगे। अब संकल्प बहुत सूक्ष्म चीज है, तो इतनी सूक्ष्म चीज और इसकी तो गति भी बहुत तेज है, इतनी तेज गति वाली इतनी सूक्ष्म चीज को दिशा दी जाए और एक एक संकल्प को चेक किया जाए। अब बड़ी चीज को अगर साफ करना हो, चने साफ करने हो तो देखो कितना सरल है, पर अगर राई के दाने साफ करने हो तो बहुत मुश्किल है। तो बोल पे तो ध्यान देना सरल है, कर्म पे ध्यान देना भी सरल है, लेकिन इन सब का बीज है मन, और मन बहुत अटेंशन मांगता है। तो जो बच्चे इस अटेंशन को रेगुलर रखते हैं उनकी तो तीव्र गति से उन्नति होती है, लेकिन कभी एक बार कर लिया, ध्यान दे लिया, उसके बाद फिर लूज हो गए तो उन्नति में भी असर पड़ जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक शहर में गई थी, वहाँ एक जेल में प्रोग्राम रखा हुआ था, और जेल में जहाँ एंटर करते हैं वहीं सामने एक बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ था। दर्पण के ऊपर पेंट से लिखा हुआ था मैं कैसा हूँ। तो उस दर्पण को देख के मुझे ख्याल आया कि ये दर्पण व्यक्ति को ये तो बता देगा कि भाई तुम लंबे हो कि नाटे हो, काले हो कि गोरे हो, बूढ़े हो कि जवान हो, ये सब बाह्य बातें तो बता देगा, लेकिन ये दर्पण ये तो नहीं बता सकता कि तुम नम्रचित हो कि नहीं हो, शांतचित हो कि नहीं हो, पवित्र हो कि नहीं हो। तो ये सारी बातें देखने के लिए हमें दूसरा दर्पण चाहिए, जिसको कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो ये वाला दर्पण कहाँ मिले, दुनिया में तो कहीं मिलता नहीं है। ये बाबा ने हमको दिया, जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान का दर्पण, लेकिन इस ज्ञान दर्पण में हम अपना चेहरा कैसे देखें। जैसे उस दर्पण में चेहरा देखने के लिए ये आंखें चाहिए, इसी तरह से ज्ञान दर्पण में अपनी स्थिति, अपने स्वरूप को देखने के लिए, मेरी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा चिंतन कैसा है, मैं उमंग में हूं कि नहीं हूं, इसके लिए ये दो आंखें नहीं लेकिन तीसरी आंख चाहिए, जिसको अपन ज्ञान की आंख कहते हैं, दिव्य नेत्र कहते हैं, अनुभूति का नेत्र कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी का अक्षर बड़ा सुंदर है, अंग्रेजी में कहते हैं रियलाइज। रियलाइज में दो शब्द हैं, रियल प्लस आईज। रियल आईज वही है जो रियलाइज करती है, और ये जो आईज है ये तो फाल्स झूठी है, केवल सामने का देखती है, कार की हेडलाइट की तरह, बस ठोकर ना लगे रास्ता दिखता रहे, बस इतना ही देखती है, दूर का ये नहीं देखती, अंधेरे में ये नहीं देखती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रियलाइज करो, जो रियल आई है, असली जो आंख है उसका इस्तेमाल करो, उस रियल आई का इस्तेमाल हम करते हैं, दुनिया में भी लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद एक तो उसका ज्ञान हो जाता है और एक उसकी क्लैरिटी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर है, अब वो कोई शरीर के अंगों को देख थोड़े रहा है आंखों से, लेकिन वो बताएगा, अगर स्कूल में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है तो एक एक बताएगा, बाई तरफ हृदय है, हृदय का वजन इतना है, इस हृदय में ऐसे ऐसे चार वाहिकाएं हैं, उनमें से ऐसे ऐसे रक्त निकलता है, एक बार में इतना रक्त निकलता है, तो देखने वाला ऐसे लगेगा कि भाई ये हृदय को देख रहा है, लेकिन इन आंखों के सामने तो हृदय है ही नहीं, वो वर्णन किसका कर रहा है, भीतर के नेत्र के सामने हृदय का चित्र है और उसको देख देख के वो वर्णन कर रहा है। तो लौकिक दुनिया में भी लोग इस तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं। और भी आप देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली चला जाए और यहाँ आबू में उसके घर के लोग फोन करें, भाई गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, तो वो वहां बताएगा दाहिनी तरफ के कमरे की, बाईं तरफ की अलमीरा के ऊपर वाले सेल्फ में, बाईं तरफ कॉर्नर में चाबी पड़ी हुई है। तो दिल्ली में होते हुए भी आबू के घर को भी देख रहा, अलमारी को भी देख रहा, अलमारी में चाबी को भी देख रहा, वर्णन भी कर रहा है, और जो सुन रहा है उसको चाबी मिल भी जाती है। तो ज्ञान में आकर के अब हम क्या करते हैं, तीसरे नेत्र का इसी तरह से प्रयोग करते हैं। कोई पूछता है भगवान कहाँ है, तो कहते हैं यहाँ से पहला लोक छोड़ के दूसरा छोड़ के एक तीसरा लोक है, उसमें लाल सुनहरी प्रकाश है, उसमें एक ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु भगवान है। तो हमने कैसे वर्णन किया, हम आंख से देख रही है क्या, बिना देखे हमने बता दिया। तो जब हमने उसको अलमारी की चाबी बताई, उसे अलमारी की चाबी मिल सकती है, तो जब हमने कहा भगवान वहां है, तो उसे भगवान भी मिल सकता है। और इसी तरह से मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, ये भी तीसरी आंख से देखने की चीज है। इस समय मैं क्या सोच रहा हूं, मैं हूं कौन, मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा हूं, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे सोचना चाहिए, क्या मैं वही देख रहा हूं जो मुझे देखना चाहिए। तो इस भीतर के नेत्र से हम बार बार अपने अंदर का साक्षात्कार करते हैं। अभी तक तो आदत थी औरों को देखने की, लेकिन अब बाबा ने कहा अंतर्मुखी, भीतर जाओ, अपने मुख को भीतर की ओर मोड़ो और अपने भीतर जो क्रिया प्रक्रिया चल रही है उसको देखो। देखेंगे तब तो परिवर्तन करेंगे ना, अगर भीतर देखेंगे ही नहीं तो परिवर्तन कैसे करेंगे। किसी भी चीज को देखने के बाद खाना बनाते हैं, देखते हैं पक गया, तो भाई गैस बंद कर दो, देखा परिवर्तन किया, कपड़े धो रही हैं, देखा मैल उतर गया, अब रगड़ना बंद कर दो। तो देखेंगे उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। इसी तरह से भीतर देखेंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सुबह से अब तक क्या क्या हुआ, बाहर नहीं भीतर क्या क्या हुआ, सुबह अमृत वेला कैसा हुआ, मुरली की कौन सी बात याद रही, सबके प्रति कैसी दृष्टि रही, बाबा से कैसा मन का रूह रूहान का कैसा संबंध रहा, बाबा से कितनी बातें की, अपने आप से कितनी बातें की, अपने आप को कितनी बार चेक किया, कितनी बार अपने मन को मोड़ा। तो ये देखेंगे उसके बाद परिवर्तन करेंगे। तो बाबा कहते हैं सेवा करो, लेकिन सेवा करते करते आपके अंदर की ये प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। तो अगर सेवा करते करते मैं इस तरह की प्रक्रिया में हूं तो सेवा निर्विघ्न है और दोनों का संतुलन है, जब चाहे सेवा में लग गए और जब चाहे मन सेवा से हटा करके स्व उन्नति में लग गए ना, सेवा खींचती हैं, नहीं तो होता क्या है। स्व उन्नति करते हैं तो सेवा खींचती है, सेवा करते हैं तो इधर का खिंचाव होता है। मेरे अभी बाबा ने मुरली चलाई थी कि जब सेवा करते हैं तो सोचते हैं कि मेरा तो पुरुषार्थ ही नहीं हो पाता है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं तो सारा दिन सेवा में ही लगा रहता हूँ, ये कितनी सेवा है। तो ना तो सेवा करते शुभ चिंतन रहा, ना स्व उन्नति हुई, ना सेवा करके संतुष्टि मिली। और जब स्व उन्नति में बैठेंगे तो क्या सोचेंगे, सेवा नहीं मिल रही है, कोई सेवा होती तो अच्छा था, मेरा पुण्य का खाता कैसे जमा होगा, सेवा ही नहीं की, कितने दिन हो गए, मुझे तो सेवा ही करने का मौका नहीं मिलता है। कईयों को देखो कितने चांसेस मिलते हैं। तो जब स्व उन्नति करने बैठते हैं तो सेवा के बारे में सोचते हैं तो क्या हो गया, ना इसमें समर्पण हुआ ना इसमें समर्पण हुआ। तो बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया कि सेवा में भी स्व उन्नति है, और जब आप स्व उन्नति करते हो उसमें भी सेवा है, दोनों चीजें एक दूसरे से ओतप्रोत है। जब हम सेवा करते हैं तो शुभ संकल्प साथ साथ चालू है तो स्व उन्नति है ही, चाहे अपन कोई भी सेवा कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन अंदर में ये शुभ संकल्प है कि ये जो सुन रहे हैं इन सबका बुद्धि योग बाबा से जुटे, इनको आज बहुत अच्छा अनुभव, इन सब की गुत्थियां सुलझे और आज इन्हें ऐसा बाबा का प्यार मिले, ऐसा इन्हें बाबा से इनका इतनी समीपता का इनको अनुभव हो, तो दोनों काम हो रही हैं, वाणी भी चल रही है और शुभ संकल्प भी चल रही है, तो सेवा भी हो गई और स्व उन्नति भी हो गई। और अगर स्थूल काम कर रही हैं, भंडारे में स्थूल काम कर रही हैं या और कोई यज्ञ का स्थूल काम कर रहे हैं, तो उस समय भी मन बाबा में लगाया जा सकता है, उसमें तो बहुत ही अच्छे से मन लगाया जा सकता है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिनकी नेचर हाथों को बनी रहती है, बिना देखे भी वो काम करते ही रहेंगे। जैसे मम्मा की जीवनी में एक बहुत अच्छी बात आती है, मम्मा ने एक बार क्या हुआ, उस समय तो बाबा मम्मा हाथों से सब काम करते थे, यज्ञ में इस तरह से सेवादार इतने नहीं होते थे, तो एक बार मम्मा गेहूं साफ कर रही थी, अनाज साफ कर रही थी, तो किसी एक बच्चे ने देख लिया, तो उस बच्चे ने सारों को जाके कह दिया, अरे देखो देखो मम्मा अनाज साफ कर रही है, तो सारे बच्चे दौड़ करके मम्मा के चारों ओर झूम गए। एक ने कहा, मम्मा आप इतनी देर से क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें बुला लिया होता। दूसरे ने कहा, छोड़ो छोड़ो मम्मा हम करेंगे, तो वो सब झूम गए और मम्मा तो थाली ऐसे गोद में लेके बैठी हुई थी, तो मम्मा ने कहा मैं कहाँ साफ कर रही हूँ, तो सबने कहा मम्मा कितना तो ये देखो ना आपने साफ करके रख दिया और ये थाली है, आप कितनी देर से कर रही हो, हमें मालूम ही नहीं पड़ा, हम और पहले आ जाते। तो मम्मा ने कहा नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, तो सब हैरान हो गए, थाली गोद में पड़ी है, मम्मा हाथ से ऐसे ऐसे कर रही है, कहती है मैं नहीं कर रही हूँ। तो कहा मम्मा आप कर तो रही हो, कहा नहीं ये तो मेरे नौकर काम कर रही है, मैं तो ऊपर बाबा के पास बैठी हुई हूँ। अब सेवा हो रही है, स्थूल सेवा हो रही है, लेकिन स्थूल सेवा होते हुए भी स्वउन्नति भी हो रही है, योग भी लग रहा है, रू रियान भी हो रही है, बाबा से अनुभव भी हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि गेहूं साफ करने के बाद योग लगाएंगे, उसके बाद तो और काम निकल आएगा, ये सफाई करने के बाद योग लगाएंगे, ये कपड़े धोने के बाद योग लगाएंगे, ये प्रदर्शनी करने के बाद फिर योग ही योग है, मेला हो जाए एक बार पूरा उसके बाद तो योग ही योग है, कभी नहीं होगा, उसके बाद दूसरी सेवा निकलेगी, फिर तीसरी सेवा निकलेगी। लेकिन सेवा करते हुए अगर डिटैच रहने की आदत डाल ली तो एक साथ दो काम हो रही हैं, डबल सेवा हो जाएगी, और जो सेवा हो रही है उसमें भी रूहानियत की खुशबू बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे बैलेंस से चलो तो ब्लेसिंग मिलेगी। लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि कई लोग तो खुले मैदान में चलते भी ठोकर खा जाते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो नट होता है ना वो पतले से तार के ऊपर भी चलता है तो लोग उसको देख के वाह वाही करते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस की कला, ना इधर गिरा ना इधर गिरा। और कई लोग खुले मार्ग पे भी ठीक से नहीं चल पाती तो लोग क्या देखने जाते हैं, उसका बैलेंस देखने जाते हैं। कई आजकल लोगों ने कमाई का साधन बना रखा है, इधर लोग खड़े होते हैं, इधर लोग खड़े होते हैं और रस्से बांध देते हैं, रस्से के ऊपर बच्चों को चलाते हैं। ये आपने गलियों में देखा होगा कई बार ये खेल, वो बच्चा हाथ में एक लकड़ी ले लेता है। तो मैंने पूछा ये लकड़ी हाथ में क्यों लेता है, तो बोला अगर गिर भी जाए तो लकड़ी के सहारे ये बच्चा बच सकता है, इतनी इसको कला होती है। तो देखिए गली में जाते लोग खड़े हो जाते हैं उसको देखने के लिए। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे जहां बैलेंस है, बैलेंस में सेवा और स्व उन्नति का ही बैलेंस नहीं है, और भी कई तरह के बैलेंस है, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस है, शरीर और आत्मा का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है। तो ये सारे बैलेंस अगर हम रख करके चलते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन इन सारों का आधार हमारा मन है। अगर हमने मन को ट्रेंड कर लिया, अगर हमने मन को ये आदत डाल ली कि वो कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन अपने स्वरूप में टिक करके रहे। स्वरूप का मतलब ही क्या है, देखो कितना प्यारा अर्थ है, स्व प्लस रूप। तो दर्पण में हम स्वरूप अपना रूप ही तो देखते हैं ना, और ज्ञान दर्पण में भी क्या देखते हैं, स्वरूप। स्व का रूप कैसा है, स्व का रूप कैसा है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो ये स्व का रूप है, प्रेम, शांति, आनंद। तो सेवा करते, घर की जिम्मेवारी निभाते, संसार में रहते, मेरे को बार बार मेरा ये रूप दिख रहा है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुभ चिंतक हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। क्या मुझे बार बार अपना वो रूप दिखाई देता है, सेवा करते मैं कौन हूँ, मुझे वो भीतर का रूप दिखाई देता है या बाहर का रूप दिखने लगता है। तो अगर सेवा करते हुए मुझे स्वरूप दिखाई देता है, बार बार अपने भीतर का रूप दिखाई देता है, मैं ये हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मेरी ये खूबी है, बाबा ने मेरी ये खूबी बनाई है, कुछ भी हो, मैं शुभ चिंतक हूँ, शुभ सोचना मेरी नेचर है, मैं ऐसा शुभ चिंतक हूँ कि दूसरे के भी अशुभ चिंतन को खत्म कर सकता हूँ। अगर ये मेरी सोच है तो सेवा भी होती रहेगी और अंदर से सफाई भी होती रहेगी, अंदर से आत्मा शक्तिशाली भी बनती रहेगी। कई बार जब इस तरह से हम सेवा की स्व उन्नति की बातें करते हैं तो दुनिया तो अपने हिसाब की है, और उस दुनिया में जब इस तरह का स्वरूप बना करके चलेंगे तो बहुत प्रकार की बातें भी आएंगी। अब उन बातों को अगर हम देखने लगते हैं तो स्व उन्नति पीछे छूट जाती है, क्योंकि मन तो एक ही है, या तो बातों में लगेगा या स्व उन्नति के चिंतन में लगेगा या अपने स्वरूप के चिंतन में लगेगा। तो उस समय बड़ा अटेंशन चाहिए, बातें भी बड़ी रॉयल रूप में आती हैं, बड़ा मायावी रूप धारण करके आती हैं। और अगर बातों में मन लग जाता है तो बातों का विस्तार बहुत है। कुछ दिन पहले दादी जानकी ने एक कागज ट्रांसलेशन करवाया था, तो उसमें उसका हेडिंग था माया। तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी, उसमें लिखा हुआ था कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी पुरानी स्मृतियों से होता है, अटैचमेंट माया का एक रूप है, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी पुरानी स्मृतियों से होता है। तो सचमुच ये माया का सूक्ष्म रूप है, मोटे तौर पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे देखो हम चुप है, मौन में है, लेकिन होगा क्या, जो पुरानी स्मृतियां हैं उनमें मन चला जाता है। देखने वाला तो कहेगा ये योग लगा रहा है, इसकी बड़ी लगन है योग में। हम भी उसको कहेंगे हाँ मैं योग लगा रहा हूं, लेकिन मन चुपके देखी सक करके पुरानी स्मृतियों में चला गया तो भले घंटा बैठे आधा घंटा बैठे योग बट्टी भी हो गई, लेकिन परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सूक्ष्म रूप आया, इसको कैसे बदलें? पहले तो चेक करेंगे और चेक के बाद चेंज करेंगे, क्योंकि जो समस्या है जिसको हम कहते हैं परिस्थिति है, सिचुएशन है, बाधाएं हैं, वो बाह्य जगत में नहीं है, वो अंदर ही है। जैसे मन चुपके से पास्ट में चला गया, बताइए बाहर किसने क्या बाधा डाली, ये तो हमारी अपनी बाधा है। तो जितनी भी बाधाएं हैं वो भीतर है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाय खड़ी है और तीन लोग उस गाय को देख रहे हैं, तो पहला आदमी गाय को देख करके सोचता है गाय तो बहुत पवित्र होती है, गाय तो हमारी माता है, तो चलो मैं इस गाय को नमस्कार करता हूं। दूसरा आदमी गाय को देख के सोचता है ये गाय बड़ी अच्छी लग रही है, इसकी नस्ल बड़ी अच्छी है, लगता है काफी दूध देती होगी, इसके मालिक से मैं इसको ले लेता हूं, मेरे को आजकल दूध की बड़ी तकलीफ है। तीसरा आदमी गाय को देख के क्या सोचता है, ये गाय तो बड़ी मोटी ताजी है और लगता है इसमें तो काफी वजन है इसका, तो अगर मैं इसे पकड़ के भगा करके और किसी कसाई खाने में बेच दूं तो मुझे तो हाथों हाथ 500,000 मिल जाएगा। अब बताइए गाय का क्या दोष है, गाय तो चुपचाप खड़ी है, लेकिन देखने वाले तीन लोग तीन तरह की बातें उसे देख के सोच रहे हैं। अच्छा मान लो अपन वहां से गाय को हटा दें तो भैंस खड़ी होगी तो सोचने वाले भैंस के लिए भी इस तरह की बातें सोच लेंगे, बकरी खड़ी होगी उसके लिए भी सोच लेंगे। तो अगर सामने के ऑब्जेक्ट को हटा भी दें, ये चीज देख के मेरे ऐसे ख्याल चलते हैं, तो कोई दूसरी चीज को देख के चल पड़ेंगे, किसी तीसरी चीज को देख के चल पड़ेंगे, क्योंकि ख्यालात बाहर नहीं है, ख्यालात अंदर भरे पड़े। जो पहला आदमी है उसके ख्यालात सतोगुणी है, वो गाय के अलावा किसी को भी देखेगा तो सतोगुणी बात ही सोचेगा, किसी का मकान देखेगा तो भी सोचेगा इसके पूर्वज बड़े अच्छे थे, इसे इतना बढ़िया मकान बना के दे गए, किसी व्यक्ति को देखेगा तो भी सोचेगा ये देखो फरिश्ते जैसा दिख रहा है, किसी और चीज को देखेगा तो पॉजिटिव सोचेगा, उसका जो पूरा अंदर का स्टॉक है वो पॉजिटिव है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका रजोगुणी है, वो चीज को केवल लाभ की दृष्टि से उपयोगिता की दृष्टि से देखता है, ये मुझे मिल जाए तो मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, ये मिल जाए तो ये जरूरत पूरी हो जाए। और जो तीसरा आदमी है उसके भीतर के संस्कार उसका स्टॉक कैसा है, वो तो क्रूर है, क्रूरता है, स्वार्थी है, तो वो जिस भी चीज को देखता है उसका शोषण कर लूं, लूट लूं, हड़प लूं, उस तरह की। तो ये जो भीतर भरा हुआ है संस्कारों में चीज को देख करके उसी प्रकार की भावना विचार प्रकट हो जाता है। तो अब बाहर की दुनिया को बदलेंगे कि भीतर से बदलेंगे, उस स्टॉक को खाली करेंगे जो नेगेटिव भरा पड़ा है, स्टॉक को खाली करेंगे। अगर अपन यहां से दूसरी जगह चले गए स्टॉक तो साथ ही जाएगा, अंदर जो स्मृति के रूप में अंदर स्टॉक भरा है, तीसरी जगह चले गए वहां भी साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं जगह को मत बदलो, विचारों को बदलो। तो मेरे विचार कैसे हैं मुझे ये देखना है, विचारों का पता कैसे पड़े, विचार कैसे कैसे देखेंगे, जैसे हमने कहा दर्पण में देखो। तो विचार स्मृतियों के आधार पे और कोई भी चीज देखने के बाद रिएक्शन के आधार पे पता पड़ता है। हम शांत बैठे हुए हैं शांत जगह में तब पता नहीं पड़ता है। जैसे मान लो एक बर्तन में मिट्टी है और हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो पानी भी गंदा हो गया, लेकिन थोड़ी देर उसको रखे रखा हिलाया नहीं तो मिट्टी नीचे जम गई और पानी साफ हो गया। तो भ्रम ऐसे होने लगता है कि साफ ही पानी है, देखो कितनी देर से रखा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कितना साफ पानी। पर पानी साफ है कि नहीं है पता कब पड़ेगा? एक चम्मच लेके गिलास में डालो और जरा हिलाओ, ऐसे तो साफ ही है। आप चम्मच डाल के हिलाओगे तब तो पता पड़ेगा। तो आदमी यूं चुपचाप बैठा हुआ है तो अच्छा ही है, बढ़िया ही है, वो क्या कह रहा है किसी को, लेकिन चम्मच डाल के उसको भी जरा हिलाओ, कोई बात आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, उसे कुछ फेस करना पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, तब तो पता पड़ेगा इसके भीतर अशांति भी है और क्रोध भी है और इसके भीतर परचिंतन भी है और इसके भीतर दिखावा भी है। तो ये जो परिस्थितियां आती हैं, ये हमें हमारा दर्पण दिखाने के लिए आती। इस भ्रम में मत रह जाना कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, अब ये परिस्थिति आई, अब अंदर झांक करके देखो। तो परिस्थिति बाहर आई और मैंने भीतर झांका, मेरे भीतर क्या हलचल हुई, देखूं तो सही हलचल किस तरह की हुई। अटैचमेंट वाली हलचल हुई, क्रोध वाली हलचल हुई, दुख वाली हलचल हुई, चिंता वाली हलचल हुई, बदला लेने वाली हलचल हुई, किस तरह की अंदर हलचल हुई, परिस्थिति तो बाहर आई। तो मुझे अपनी अंदर की हलचल से अपनी स्थिति को, अपने स्टॉक को चेक करना है। जब भी ये व्यक्ति सामने आता है तो मेरे को इसका देह दिखाई देता है, तो अंदर की हलचल है ये, आपकी अभी देह दृष्टि है। अब देह दृष्टि को अंदर से खत्म करो, वो व्यक्ति तो आएगा ही। आप ये तो कह नहीं सकते कि दुनिया से व्यक्ति कहीं निकल जाए, कोई और आएगा। ये व्यक्ति सामने आते ही मुझे मोह आता है, इसका मुंह देखते ही मैं बाबा को भूल जाता हूँ। तो ये मोह का स्टॉक अंदर पड़ा हुआ, अंदर से मोह को खत्म करो। और अंदर से मोह को खत्म करने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करो, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी शिव बाबा का बच्चा, मैं भी शिव बाबा का बच्चा, तब वो स्टॉक खत्म होगा। और उसके बाद वो व्यक्ति बेशक साथ रहे तो भी हम उसे आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, ये अपना पार्ट प्ले कर रहा है। किसी को देखा और बदले की भावना आ गई, इसका मतलब अंदर स्टॉक है बदले का, भरा पड़ा है। तो अंदर से खाली करो, मुझे बदला नहीं लेना किसी से, मैं बदला क्यों लूं, बाबा बैठा है ना, मुझे थोड़े ला हाथ में उठाना है, करण करावनहार बाबा है। कौन सा व्यक्ति कैसे कर्म करता है, उस कर्म का क्या फल निकलेगा, क्या फल निकलना है, ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़े, इसलिए मैं क्यों इसका चिंतन करूं। तो अंदर पता पड़ा अभी बदले की भावनाएं हैं, किसी को देख के ईर्ष्या पैदा हो गई, ये व्यक्ति ये काम करता और मुझे ईर्ष्या आती, तो ईर्ष्या का स्टॉक भी अंदर भरा पड़ा। सबको देख के तो नहीं आती पर एक को देख करके आती है, इसका मतलब स्टॉक है तो सही ना। लोभ आता है किसी चीज को देख करके, इसका मतलब लोभ का भी स्टॉक अंदर है। सब जगह नहीं आता पर किसी जगह आता है तो सही ना स्टॉक अंदर। तो प्रॉब्लम अंदर है, संस्कारों में, संस्कारों में कैसे गई, बार बार वो प्ले हुई, आदत बन गई, बार बार लोभ किया था, लोभ की आदत पड़ गई, बार बार ईर्ष्या की थी, ईर्ष्या की आदत पड़ गई, बार बार झूठ बोला था, झूठ की आदत पड़ गई, बार बार करने से, बार बार करने से वो संस्कार पक्का हुआ। अब बार बार सच बोलने से, बार बार सच का अभ्यास करने से वो संस्कार कम होगा। जैसे बच्चा स्लेट पे लिखता है तो कैसे लिखता है, एक बार लिखेगा फिर ऊपर से फिर लिखेगा, वो अक्षर गहरा होता जाएगा। तो मिटाने के लिए उसे रबड़ उतनी बार घुमाना पड़ेगा, हल्का लिखा होगा तो एक बार रबड़ चलाएगा मिट जाएगा। गहरा लिखा 10 बार पेंसिल फिराई तो रबड़ भी 10 बार फिराना पड़ेगा तब वो उतरेगा। इसलिए कहते हैं किसी चीज को बनाने का जो तरीका होता है मिटाने का तरीका भी वही होता है। अपन किसी चीज पे धागा लपेटते हैं तो कैसे लपेटते हैं, और फिर धागे को उतारना हो तो उतनी बार आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप कहीं गए एक कदम दूसरा कदम रख करके 100 कदम गए, वापस लौटोगे तो कैसे लौटना पड़ेगा, फिर उसी रीति से कदम 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 रखते वापस आओगे। तो संस्कार कैसे बने, जिस तरीके से संस्कार बने उसी तरीके से मिटेंगे। ना कोई जादू है ना कोई चमत्कार है और ना ही कोई कृपा है। बाबा की मदद जरूर है, हिम्मत है बच्चे मददे बाप, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा। तो संस्कार बने कैसे, 63 जन्मों में खूब क्रोध किया, बिना बात क्रोध किया, वो अंदर स्टॉक भर गए, जितनी बार किया उतनी बार अंदर स्टॉक जमा होता गया। खूब लोभ किया, चीजें इकट्ठी की, दूसरों की चीजों को लालच की दृष्टि से देखा, लोभ की बातें सोची। अब वो फिर सिर उठा लेता है किसी भी चीज को देख करके। तो ये जितनी भी बातें हैं ये बार बार मन में संकल्प पैदा कर करके इनको हमने अंदर जमा कर लिया। अब भगवान कहता सारा स्टॉक खाली करो, इसको लेके आप सतयुग में जा नहीं सकते, आत्मा तो ये तो साथ ले जाएगी ना। अगर किसी ने कोई चीज उठा ली वो चीज साथ नहीं जाएगी, लेकिन चीज उठाने का संस्कार साथ जाएगा। तो नुकसान डबल हो गया, एक तो चीज उठाने की मेहनत ही की। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि चोर सारी जिंदगी क्या करता है, एक जगह से चीज उठा के दूसरी जगह रखने की मेहनत करता रहता है बेचारा, बाकी जाता तो उसके साथ कुछ भी नहीं है। किसी के घर से उठा के अपने घर में ताले में बंद करके रख दी, बस ना, और क्या है। फिर किसी और के यहाँ से उठा के किसी और जगह जमीन में गाड़ दी, बस ना, इससे ज्यादा बताइए वो और क्या कर सकता है। तो जिंदगी भर चीजें उठाने की मेहनत करता है, बाकी मिलता उसे कुछ नहीं। हाँ, ये उठाने का संस्कार पक्का हो जाएगा, जाएगा तो इस संस्कार को लेकर के जाएगा, चीज को ही नहीं जाने वाले। तो जैसे हमारे संस्कार बने, आदतें बनी, उसी तरीके से उनको पहले धूमिल करेंगे, उसके बाद वो मिटेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मन को खाली मत छोड़ो। जैसे ही खाली होगा वो जो स्टॉक है ना उसकी तरफ दौड़ेगा। बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया इसने 63 जन्म, तो जब अभी इसको काम नहीं देंगे तो क्या करेगा, जो अंदर भरा है उसको यूज करेगा। और अगर अभी काम में लगा करके रखेंगे तो अंदर वाला खत्म हो जाएगा, यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे कुछ मोबाइल नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज यूज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं साल में 6 महीने में आते हैं, तो जिन्हें हम रोज यूज करते हैं वो तो हमें याद रहते हैं। साल 6 महीने वाले या तो डायरी में होंगे या मोबाइल में पड़े होंगे, पर हमको जबानी याद नहीं। क्यों, जिसको याद ही नहीं किया वो फिसल गया, खिसक गया, और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। तो जिन संस्कारों को यूज करते हैं, यूज करना माना उनको पक्का करना, अभी अभी क्रोध को यूज किया वो और पक्का हो गया, और यूज ही नहीं किया कई दिन तक, 6 महीने हो गए क्रोध को यूज ही नहीं किया, खत्म हो गया। तो खाली मन क्या करता है, जो पहले से स्टॉक भरा पड़ा है उसको यूज करता है, उसको और तो कोई काम है नहीं। और अगर मन बिजी है तो उसको यूज नहीं करता, यूज नहीं करेगा तो स्टॉक अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं कि आप मिटाने की कोशिश मत करो, लेकिन अपने में नया भरने की कोशिश करो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल तो बच्चे पेन कागज से लिखते हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक बच्चे स्लेट पे लिखा करते थे चौक से या एक बत्ती होती थी उससे, तो वो क्यों था, क्योंकि अभी अभी लिखो और अभी अभी मिटा दो, बहुत कम खर्चे में बच्चा पढ़ जाता था। आजकल तो इतनी महंगी कॉपी और इतनी इतनी कॉपी बच्चे भर देते हैं, इसलिए माँ बाप को एक बच्चा पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बड़ा सस्ता जमाना था, जैसी स्लेट थी लिखा और मिट गया, बच्चे का मन भी वैसा ही था, अभी अभी किसी ने बात कही और अभी अभी मिट गई। फिर हम बड़े हुए तो कॉपी पेन से लिखना शुरू किया, तब तक हमारा मन भी कॉपी पेन जैसा हो गया था, एक बार लिख दो तो फिर मिटे ही ना। लेकिन अब बाबा कहते हैं फिर से बच्चे बन जाओ, लिखना सरल है मिटाना मुश्किल है, लिखने में सेकंड लगता है, कॉपी पे आप एक लाइन लगाओ पेन से एक सेकंड लगा, लेकिन उस लाइन को मिटा के दिखाओ निशान पड़ जाएगा मिटाने में, तो मिटाना बहुत मुश्किल है। हम सब लिखने में होशियार हैं, सारा दिन क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर में कीज दबाते हैं, ए दबाया तो सामने आ गया, बी तो, ये हमारी इंद्रियां भी कीज का ही काम करती हैं, आंख से ये देखा अंदर चला गया बिना पूछे, कान से सुना अंदर चला गया बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी गेटकीपर के, बिना किसी चौकीदार के, सारा दिन ये कीज दबती रहती है और अंदर दृश्य और बातें अंदर जाती रहती है। भाई उसकी कोई ना कोई सुपरविजन तो होना चाहिए कि अंदर जाए कि नहीं जाए, लेकिन नो सुपरविजन, सारा दिन जाती रहती है ना बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी चौकीदारी के, बिना किसी पूछताछ के। अब रात तक तो पूरा स्टॉक बढ़ जाता है, कई सारी बिना जरूरत की चीजें अंदर चली गई, बिना जरूरत की कानों से चली गई, अब इतनी सारी बेजरूरत की बातें मन के स्क्रीन पे आ गई। अब मिटाने में योग में बैठेंगे, एक बात याद आई, एक दृश्य याद आया, एक और फिर याद आई, ये इतनी सारी बातें अब क्यों याद आ रही हैं? इसलिए याद आ रही हैं कि सारा दिन दरवाजा खुला था और बेरोक टोक के चीजें अंदर जा रही थी, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों जा रही हो, तुम्हारी जरूरत नहीं, अंदर जगह नहीं है। और अब जब योग में बैठे हो तो सवाल पूछ रहे हो, ये कहां से आ गई, वो कहां से आ गई, ये क्यों याद आता है, वो क्यों याद आता है। तो उसी समय अंकुश रखना था ना, अब तो ये घुस गई अंदर, घुसे हुए को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए लोग गेट पे ही रोकते हैं। तो सारा दिन लिखना, इसी को तो कहते हैं ना लिखना, यानी कि अंदर ले जाना, मन की स्क्रीन पे लिखा गया, अब उसको मिटाने में बहुत डिफिकल्टी, तो लिखे ही ना, ध्यान से लिखें, क्या लिखना है सोच समझ करके लिखें। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि ये योग बहुत पावरफुल है और ये 63 जन्मों के संस्कारों को मिटा देता है, ये बात सत्य, लेकिन हम पुरानों को तो तब मिटाएंगे ना जब वर्तमान की मिटेंगे, हम वर्तमान में ही बनाए जा रहे हैं, तो उनको योग जो लगाते हैं वो सारी मेहनत वर्तमान वाले डिलीट करने में ही लग जाती है, तो जो पुराना स्टॉक है 63 जन्मों का वो कब मिटेगा। तो वो तब मिटे जब हम वर्तमान में नया कुछ भी ना लिखें कागज पे और पुराने को ही मिटाने में अपनी सारी शक्तियां लगा दे तो वो मिट जाएगा, लेकिन रोज इतना नया लिख लेते हैं कि रोज का योग उसको भी नहीं मिटा पाता तो वे पुराने की बारी कब आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को डबल काम करना है, ट्रिपल काम करना है, समय कम है काम ज्यादा करना है, नया लिखा ना जाए, व्यर्थ कोई भी नया अंदर ना जाए, और पुराना है उसको मिटाने के लिए बहुत शक्तिशाली योग हो। तो डबल कमाई होगी और कम मेहनत में होगी, क्योंकि जब नया अंदर जाएगा ही नहीं तो पुराने वाला तो योग अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए पिछले कुछ दिनों की बाबा की मुरलियों का अध्ययन करेंगे तो उनमें बाबा ने एक बात बार बार कही है, सबसे बड़ा पुण्य है बाबा को याद करना। क्यों सबसे बड़ा पुण्य है? इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है कि दुनिया में आपको डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, दानी बहुत मिल जाएंगे, सन्यासी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिनका मन भगवान में एकाग्र है ऐसे लोग कितने मिलेंगे? जिनका मन मन मना भव है, दुनिया के 700 करोड़ लोगों में से इतने लोग, ऐसे लोग कितने? भले हम बाबा के बच्चे हैं और हम सब मन मना भव होके रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बाबा कहता है उस तरीके से मन मना भव होके रहने वाले कितने होंगे? सर्जन और आईएस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये रेयर बात है, ये रेयर उपलब्धि है, ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। मन मनाभव होना इतना सरल नहीं है, डॉक्टरी पढ़ना फिर भी सरल है, आईएस बनना फिर भी सरल है, लेकिन मन को उसकी प्यार भरी याद में लगा करके रखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसकी प्राप्ति बड़ी भारी, धन लगाना सरल है, मंदिर बनाना सरल है, पेड़ लगाना, बगीचे लगाना, गरीबों की सेवा करना, कैंप लगाना, ये सब काम सरल है। भगवान की दया से किसी के पास पैसा है और दिल भी बड़ा है तो वो सेवा कर लेता है। ये सेवा भी सब नहीं करते पर फिर भी कर लेते हैं, लेकिन मन बाबा में लग जाए ये वाला काम, और इसी से सारे पाप नष्ट होते हैं। दान करेंगे पाप नष्ट नहीं होंगे, पेड़ लगाएंगे पाप नष्ट नहीं होंगे, आपका पुण्य का खाता बढ़ जाएगा। लेकिन जो जमा स्टॉक है पाप कर्मों का वो कैसे खत्म होगा? वो बाबा की याद से खत्म होगा। हम चाहते हैं हमारे पाप खत्म हो, पुण्य का खाता जमा हो, हम बहुत पुण्यवान आत्माएं बन जाए, तो वो तब होगा जब बाबा की याद होगी। और बाबा की याद कब होगी? जब मन खाली होगा। इसलिए मुरली में बाबा का महामंत्र है, मित्र संबंधी, देह के संबंधी सबको भूलो, बार बार हर मुरली में ये बात आती है, क्योंकि बहुत जरूरी है। देही अभिमानी बनो बहुत जरूरी है। कई भाई बहन कहते हैं बाबा ये दो बातें बार बार रिपीट करती है, देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो। हर मुरली में 2 बार 6 बार 8 बार होती है, वो तो होगी। जैसे आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोजन खाते हो, तीनों टाइम के भोजन में गेहूं या कोई ना कोई अनाज जरूर होगा, उसके बिना भोजन बन सकता है? शरीर के लिए अनिवार्य है वो, सब्जी दाल, भले एक सब्जी नहीं होगी तो दूसरी होगी, भले एक प्रकार का अनाज नहीं होगा तो दूसरी प्रकार का होगा, बेसिक चीज है वो, उसके बिना भोजन बन ही नहीं सकता। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन को स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिक बात है आत्म अनुभूति और परमात्म अनुभूति। बार बार आत्मा का अनुभव करो, बार बार परमात्मा का अनुभव करो, भीतर के नेत्र से बार बार आत्मा को देखो, बार बार अपने से पूछो मैं कौन हूं, बार बार अपने से पूछो मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, एक बार नहीं 1000 बार दिन में पूछो, क्योंकि फिर भूल जाता है मैं कौन हूं, मैं एक सितारा हूं, मैं इस रंगमंच का पाठ धारी हूँ, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ, फिर भूल जाती है ये बात, फिर याद आ जाता है मैं फलाने का काका हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ, फलाने शहर का हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, फिर आवरण चढ़ गया, फिर दर्पण धुंधला हो गया, फिर दर्पण को पहुंचो, फिर पूछो मैं कौन हूँ, अरे नहीं, मैं तो एक सितारा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, इस शरीर में निमित्त मात्र ठहरा हुआ हूँ, मैं बहुत दिन रहने वाला नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ तो ये शरीर क्या करेगा, इसको भी जाना है, इसलिए बहुत जल्दी हमारा सेपरेशन होने वाला है, शरीर और आत्मा का तलाक बहुत जल्दी होने वाला है, जाना है अब आत्मा को, बहुत साथ निभाया इसने शरीर के साथ, अब ये जाने वाली है, तो उपराम हूँ, जैसे ही ये अपने आप को ये पाठ पक्का कराती हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, और वो मेरा घर है, मुझे दिख रहा है, मुझे वहीं जाना है, और इस देह में मैं कुछ समय के लिए हूँ, तो दर्पण साफ हो गया, आपको अपना चेहरा दिखने लगा, अरे मैं सितारा चमकता हुआ बेदाग, और जैसे ही आप इसको भूले, दर्पण पे मिट्टी आ गई, तो दिन में कितनी बार दर्पण साफ करना पड़े, इस पे तो मिट्टी बहुत जल्दी लगती है, स्वच्छ चीज पे तो मिट्टी जल्दी दिखती है, बार बार दर्पण साफ करना पड़े, इसलिए बार बार अपने से बात करनी पड़े, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी दिशा क्या है, मेरी सोच कैसी है, मैं किसका हूं, उसने मुझे क्या काम दिया हुआ है, फिर भूल जाते हैं मैं किसका हूं और कितनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मेरे एक एक कर्म का हिसाब बन रहा है, फिर भूल जाते हैं। और जैसे ही भूले तो भूलते ही माया क्या सोचती है, ठीक है अब तो बाबा इसके साथ नहीं है, वो तो चारों तरफ सर्वव्यापी माया है, शिव बाबा तो सर्वव्यापी नहीं, इसलिए कई भाई बहन कहते हैं घंटा सुबह योग लगाया, मुरली पड़ी, फिर भी स्थिति डावाडोल बीच बीच में क्यों हो जाती है, जैसे ही कवच उतरेगा शत्रु का वार आ जाएगा, कवच उतरना ही नहीं चाहिए, इसलिए बाबा ने नियम दिया, नहाते खाते पीते, बताइए कौन से समय की बाबा ने छूट दी कि चलो इस टाइम बेसिक याद मत करो तब माया नहीं आएगी, छूट है क्या 24 घंटे में, सोते नींद में भी याद होनी चाहिए, बाकी बातें तो छोड़िए, नींद में भी याद होनी चाहिए, नहीं तो नींद में भी सपने के रूप में माया आके वार करेगी, डरावना सपना आएगा, देह विमान का सपना आएगा, पुरानी स्मृतियों का सपना आएगा, तो देखा दिन भर आप चौकन्ने रहे, रात को माया ने पकड़ ली, माया बड़ी दुस्तर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, लौकिक दुनिया में भी लोग युद्ध के मैदान में जाते हैं तो उन्हें एक पाठ पढ़ाया जाता है, जो कमांडर होता है वो अपने सिपाहियों को जब युद्ध के मैदान में भेजता है तो एक पाठ पक्का करा के भेजता है, वो पाठ क्या है, शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझो, मान लीजिए वो 10,000 है उसके सिपाही और सामने वाली सेना में केवल 5,000 है, तो भी वो पक्का करा के भेजेगा, ये मत समझना कि वो कम है और तुम्हारी जीत हो जाएगी, अरे क्या पता उनके 5,000 बहुत शक्तिशाली हूं, इसलिए पूरे मनोयोग से युद्ध करना, पूरे अलर्ट होके युद्ध करना और जीत पाने के बाद भी लूज मत हो जाना, क्या पता वो चाल चले, क्या पता वो आपको बहकाने के लिए एक बार हार गए हूं और फिर जब आप ढीले हो जाओ फिर वो जोर से वार करी, तो वो कमांडर सब सिखा पढ़ा के भेजता है, तो हमारा बाबा भी हमें बार बार सिखाता है पढ़ाता है, माया को कम मत समझो, अलर्ट रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि माया जीतेगी, इसका मतलब ये है कि ढीले मत हो जाओ, एक बार बहुत अच्छी अनुभूति हो गई, हाँ मैं तो बहुत अच्छा योगी बन गया, जैसे ही ढीले होंगे माया फिर पकड़ेगी गर्दन, आप ढीले क्यों हुए, अनुभूति एक बार थोड़े करनी है, रोज करनी है, हर घड़ी करनी है, जीना ही अनुभूतियों में, तो हम सबको ये पाठ पक्का करना है कि माया अंत तक आएगी, परीक्षा लेगी और हमको विजयी बनना है। इसलिए चाहे जागृत अवस्था हो चाहे निद्रा अवस्था हो, स्वप्न में भी बाबा दिखे, बाबा की बातें याद आए, ज्ञान चर्चा हो, तब हम समझें कि हमारे सूक्ष्म संस्कार भी सुधर गए। स्वप्न व्यक्ति के कर्म और संस्कार की ही परछाई है। सारा दिन वो जो करता है, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि देखो बाबा मम्मा को भी जितने बच्चों को वर्ष मिले पुरुषार्थ के, उतने ही बाबा मम्मा को भी मिले। लेकिन वो संपूर्ण क्यों बन गए? क्योंकि उनकी जो नींद थी वो नींद भी पुरुषार्थ में काउंट होती थी, उनकी नींद भी योग युक्त थी, वो नींद भी योगी बन करके करते थे। तो नींद के भी जो कुछ घंटे थे वो उनकी कमाई में जमा होते थे, इसलिए वो संपन्न बन गए। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हमारे स्वप्न और हमारी नींद भी कमाई में हो? हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प चाहिए। सारा दिन चिंतन चाहिए कि बाबा मेरा स्वप्न आपकी याद का हो, बाबा मेरा जो भी सपना आए, मुझे जो भी सपना आए उसमें आप मुझे दिखाई दे या आपका ज्ञान दिखाई दे, इसके अलावा मुझे कोई सपना नहीं आना चाहिए। ये बार बार अपने को पक्का कराओ, बाबा के साथ बार बार रो रिहान करो, तो बहुत बढ़िया सपना आएगा। जो भी कमी कमजोरी हो वो बाबा को सुना दो, बाबा ये कमजोरी है और ये मेरे को नहीं चाहिए। जैसे लौकिक में बच्चे को कोई चीज पकड़ाओ तो बच्चा क्या कहता है, ये घटिया है मेरे को नहीं चाहिए। तो माँ बाप समझ जाते हैं हमारे बच्चे को ये चीज पसंद नहीं, तो बाबा को पता तो पड़े आपको ये पसंद नहीं है, आप कभी बताते ही नहीं हो, तो बाबा को कैसे पता पड़े कि आपको ये पसंद नहीं है। आप बाबा को कहो बाबा मेरे को ये कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे छूटना ही है इनसे, मैं आपका बच्चा हूं, तो बाबा देखेगा बच्चे को ये कमजोरी पसंद नहीं है, मदद करेगा। हम कभी बताते ही नहीं है, क्या सोचते हैं कि ये तो आएगी, फलाने को भी आती है फलाने को भी आती है, हम ही ढीले हैं तो फिर बाबा कैसे मदद करे। इसलिए बार बार अपने को देखना है, बार बार दर्पण की धूल साफ करनी है और बाबा की मदद लेनी है। लगन तीव्र होगी, संकल्प दृढ़ होगा तो बाबा मदद करेगा। बाबा भी तो अपना समय वहीं लगाएंगे ना जहां बाबा को लगे कि यहाँ समय लगाने से फायदा होने वाला, शक्ति देने से फायदा होने वाला। तो अगर ये दो तीन धारणाएं अपन पक्की करेंगे तो चाहे अपन कहीं भी होंगे, कैसी भी विपरीत परिस्थिति में होंगे, बाबा की मदद भी मिलेगी और हमारी स्व उन्नति भी होती रहेगी। बाबा कहते हैं जब बाबा धरती पर आएगा हर बार तो कलयुग में ही आएगा, और कलयुग की स्थितियां हर बार ऐसी ही होंगी, किसी के घर में कुछ है, किसी के शरीर में कुछ है, किसी के संबंधों में कुछ है, किसी की नौकरी में कुछ है, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए हमको स्व उन्नति जरूर करनी, हम बहाना नहीं दे सकते। जैसे बाबा बुजुर्ग थे तो बच्चे बाबा को कहते थे बाबा आप बुजुर्ग हो इसलिए स्थूल काम आप नहीं करो हम कर लेंगे, तो बाबा कहते थे बच्चे जब जब शिव बाबा इस तन में आएगा तो ये तन बूढ़ा ही होगा, और अगर बाबा ये सोच के सेवा ना करे कि ये शरीर बूढ़ा है तो बाबा का तो कर्मणा वाला जो विषय है उसमें तो बाबा के नंबर ही जमा नहीं होंगे। इसलिए बच्चे ये शरीर चाहे जैसा भी है लेकिन इसी शरीर से मेरे को सेवा करनी है। तो देखो बुजुर्ग होते भी बाबा ने बहुत स्थूल सेवाएं की, नहीं तो बाबा भी बहाना लगा सकता था कि 60 साल की आयु में तो लोग रिटायर होते हैं और मेरे को 60 साल की उम्र में काम करना पड़ रहा है, बाबा भी बहाना दे सकता था, लेकिन बाबा ने कोई बहाना नहीं दिया। तो जैसे बाबा को बुजुर्ग शरीर से सेवा करनी पड़ी ऐसे हमको भी है, किसी को बीमार शरीर है, किसी को घर के लोगों का कोऑपरेशन नहीं है, किसी को सेवा क्षेत्र में समस्या है, कई तरह की बातें, लेकिन उन सब के होते हुए भी अगर हमारा दृढ़ संकल्प है तो उन्नति अवश्य होगी और बाबा हम बच्चों को मदद अवश्य करेंगे। अच्छा
दिया।